अस्माल हुस्ना के सिलसिले में इंशाल्लाह ताला हम आज जिस नाम पे बात करेंगे वो है अल अजीज। अभी तक हम अल्लाह ताला के जो नाम देख चुके उसमें लफ्ज़ अल्लाह जो अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, अर रहमान, अर रहीम, अल मालिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मुमिन और अल मुहैमिन। तो आज इंशाअल्लाह ताला अल अजीज नाम है और मैं खुद भी फील कर रही हूँ कि रोज एक नाम करने का ये फायदा हो रहा है कि इन सब नाम याद होते जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला को उसकी सिफात के जरिए से पहचानना है, जब तक उसके नामों का मतलब समझ नहीं आएगा तो फिर बाज़ दफ़ा इंसान वो कदर नहीं कर पाता और अल्लाह ताला को पुकारने के बावजूद उसकी ज़िंदगी में वो रंग नहीं दिखता कि जो कि अल्लाह का रंग ज़िंदगी में आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि अल अज़ीज़ का मतलब क्या है और मुख्तलिफ लोगों ने इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया। ये सिर्फ बात ही नहीं होगी, पूरी बात को सुनते हुए दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत को महसूस करना है और अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ना है, क्योंकि वो इल्म जो सिर्फ किताबी इल्म हो जिसके अंदर अल्लाह ताला के साथ स्पिरिचुअलिटी ताल्लुक। हम किसी का भी नाम लेते हैं तो उसके साथ ही हमारे जहन में कोई तसव्वुर आता है। मतलब किसी को किसी से मोहब्बत हो और उसका नाम कहीं सुन ले, क्या होता है? हमें किसी से मोहब्बत और उसी नाम का जिक्र किसी जगह सुन ले तो हमें क्या महसूस होता है? बेहिस तो नहीं बैठे रहते ना? मैंने देखा है जिस मॉडल की अपनी गाड़ी हो वो गाड़ी हर जगह दिखती है, जिस रंग की गाड़ी हो वो रंग आपको कसरत से दिखता है। जिसको कह लें कि दिल में जो होता है वो फिर जाहिर में भी दिखने लगता है। अल्लाह सुबहाना ताला की ज़ात वाकई इस काबिल है कि उसके लिए इंसान अपने दिल को खाली करे तमाम बातों से, तमाम ख्यालात से। तो अल अज़ीज़ का लफ्ज़ ऐन, ज़ा और ज़ा इसका रूट है। इसका मतलब है सब पर ग़ालिब, डोमिनेंट। इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों के अकवाल आपके सामने रखूंगी और आपने इनको सुनते लिखते हुए दिल पे भी लेना है। इब्ने जरीर एक मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं अल अजीज कौन है? अल शदीद फिल फी इंतकामी ही। अल अजीज वो जात है जो दुश्मनों से इंतकाम लेने में सख्त तरीन है। यानी अल्लाह ताला की सिफत अल अजीज क्या तकाजा करती है? कि जो उसके बंदों की तरफ मैली निगाह भी उठाए वो उनसे इंतकाम ले। अगर अल्लाह ताला की इस सिफत को सामने रखते हुए आज के मुसलमानों के हालात को देखें, कई जगह पे मुसलमानों पे जुल्म है, बर्बरियत है, उनको जान से भी मारा जा रहा है और ईमान से भी महरूम किया जा रहा है, तो इस वक्त अल्लाह ताला की सिफत अल अजीज इस चीज़ का तकाजा करती है कि वो दुश्मनों को पकड़ ले। एक लम्हे की देर लगेगी सिर्फ, जैसे अपने घर की हिफाजत उसने अबाबीलों से करवा ली, हुदहुद के जरिए से तबलीग करवा ली। इस वक्त भी अगर अल्लाह सुब्हान तआला ज़मीन के उन टुकड़ों को जहां दुश्मनों के हाथ मुसलमानों की गर्दनों पे हैं हल्की सी हरकत करने का इशारा कर दे, वो इस तरह से हरकत करे कि ईमान वाले तो बच जाएं और दुश्मन खुदा नीस्तो नाबूद हो जाएं। हमारा ईमान है, वो पानियों के खजाने उन पे भेज सकता है और सब डूब के रह जाएं, समंदरों के बल खोल सकता है। हमारा ईमान है कि अल्लाह अजीज है इस बात पे कि हमारे दुश्मनों से इंतकाम ले, और उसने लिया। लेकिन आज क्यों नहीं ले रहा? इसकी वजह यह है कि आज मुसलमान मुसलमान नहीं। तो लिहाजा जहन में ये बात रखने की है कि अल्लाह ताला की सिफत अल अजीज कैसी है कि दुश्मनों से इंतकाम लेने की मुकम्मल ताकत रखती है। इसी तरह एक और तफसीर इसके बारे में इब्ने जरीर ही फरमाते हैं कि जब अल अजीज किसी को सजा देने का इरादा फरमा ले तो कोई ताकत ऐसी नहीं जो उसकी सजा को हटा सके। सच है ना? और अल्लाह ताला जब वाकई लोगों को बचाने पे आ जाता है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि मुसलमानों के पास मदद कहाँ से आ रही है। अब इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने इस नाम की हैसियत से कहाँ कहाँ मुसलमानों की मदद की, लेकिन सिर्फ इस छोटी सी कोटेशन से इनको अगर हम नकल कर सकें, हम जब गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला से ताल्लुक महसूस होगा। इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि अल अज़ीज़ वो ज़ात है जो हर चीज़ पर गालिब है, और इसके गलबे अजमत और बड़ाई की वजह से कोई इसकी बारगाह तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, अल अज़ीज़ जल्ला जलालुहु वो ज़ात है जो गालिब और कवी है, और इस पर कोई कादिर नहीं हो सकता और न गलबा पा सकता है। आप कहेंगे इन कोटेशंस को लिखने और लिखाने की क्या ज़रूरत है? मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला की ज़ात पे लोगों ने किस तरह तदब्बुर किया। एक एक नाम पे उसका गलबा इस तरीके से महसूस होता है कि फिर इंसान के दिल के ऊपर भी अल्लाह सुबहान तआला की बड़ाई महसूस होने लगती है। हम लोग अल्लाह सुबहान तआला के नामों को सिर्फ याद करते हैं या देख के पढ़ते हैं, लेकिन उसका हक अदा नहीं करते, वरना ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के अल अज़ीज़ होने का यकीन हो और इंसान नाउम्मीद हो, मायूस हो। शेख सादी फरमाते हैं रहमहुल्लाह, इनकी बहुत मारूफ तफसीर है, तफसीर सादी अरबी की, मैं आपके सामने सब उर्दू ही तर्जमे इसलिए करके रखती हूँ कि ताकि आपको मुश्किल ना हो अरबी के बोलने की और वक्त भी हम बचा सकें। लिखते हैं कि अल अज़ीज़ जल्ला जलालुहु वो ज़ात है कि हर तरह की शान व शौकत उसी के लिए है। सोचें ज़रा, सारी शान अल्लाह की है, क्या इंसानों को हक बनता है शान दिखाने का? आज तो दुनिया में ऐसे लगता है कि हम शान दिखाने वाले बनते हैं हर मुमकिन तरीके से कि किसी तरह हमारी शान बन जाए, लेकिन असल शान उस मालिक कायनात की है जिसका नाम अल अज़ीज़ है। फिर कहते हैं, कुव्वत भी इसी के पास है, गलबा भी इसी का है, तमाम तर तसर्रुफात भी इसी के इख्तियार में है। मखलूकात में से किसी के लिए ये मुमकिन नहीं कि इसकी सिफात तक रसाई हासिल कर सके। तमाम तर मौजूदात पर गालिब है, तमाम मखलूकात उसके सामने कमतर और उसके आगे सरनिगू हैं। अभी तक जितनी बात हुई, अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, तो अल्लाह की ज़ात अल अज़ीज़ है, गालिब है, शान व शौकत वाली है, गलबे वाली है। जब एक बंदा उसके नाम पे निकल पड़ता है, उसकी ज़ात को बड़ा बना लेता है, उसको मान जाता है, तो फिर वो उसको भी इज्जत वाला कर देता है, फिर वो उसको भी गलबे वाला कर देता है। आज दुनिया में इंसान बहुत सारी कोशिशें करते हैं कि हम इज्जत पाएं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इज्जत उसी से मिलेगी जो अल अज़ीज़ के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ लेगा। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात को सामने रखें, तो ग़ज़वे बदर हो या उहद हो, मुसलमानों की तादाद दुश्मनों से 3 गुना कम थी, लेकिन नतायज किनके हक में हुए? बदर में फतह हासिल हुई तो कैसे हुई? 313 ने 1,000 को पिछाड़ दिया तो क्या वो उनकी ताकत थी? ये अल अज़ीज़ की ताकत थी जिसने मुसलमानों को गालिब किया। ग़ज़वे उहद में एक बहुत इबरतनाक किस्म की शिकस्त हो सकती थी मुसलमानों को, लेकिन वो कौन सी ज़ात थी जिसने मुसलमानों की शिकस्त को बराबरी में बदल दिया और दुश्मन बग़ैर मदीना पे हमला किए वापस चले गए? ये अल्लाह की ज़ात है। ग़ज़वे खंदक को देख लीजिए, चारों तरफ से कबीले मिल मिल के मुसलमानों पे जुल्म करने के लिए आ गए कि आज इनको मिटा देंगे, बस आज के बाद इनका नाम नहीं रहेगा, और मुसलमानों ने अपनी हिफाजत के लिए एक खंदक खो दी, एक रुकावट बनाने की कोशिश की कि दुश्मन उन तक ना आ सकें, और उसी के दौरान एक इतना भारी पत्थर आ गया कि जिसको सारे सहाबे कराम मिल के भी तोड़ नहीं सके। अल्लाह के नबी सल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये पत्थर नहीं हटता, ये बड़ी सख्त चट्टान है। कहा, तुम पीछे हटो, इसको मैं तोड़ूंगा। और फिर आपने अपना खुदाल लिया और एक ज़र्ब लगाई। आपके उस ज़र्ब लगाने की देर थी कि उस चट्टान का एक टुकड़ा कट के दूसरी तरफ गिरा। आपने फरमाया कि मुझे हीरा यानी मुल्क फारस के ख़जाने दिखाए गए। एक और कुदाल लगाई, एक और शोला निकला और एक पत्थर का टुकड़ा गिरा। आपने फरमाया मुझे रोमियों के सुर्ख महलात दिखाए गए। फिर तीसरी जर्ब लगाई तो आपने फरमाया कि मुझे यमन के महलात दिखाए गए। ऐसे वक्त में जब मुसलमानों के तन के ऊपर कपड़े भी नहीं थे, भूख की वजह से पेट पे पत्थर बंधे हुए थे, उस अजीज़ ने ऐसी आयात नाजिल करवा दी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज के, कि जिसने क़यामत तक के मुसलमानों को ये बात सिखा दी कि असल फतह और नुसरत उस गालिब इज़्ज़त वाले की तरफ से है। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 26 है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़ुल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ए नबी, आप कह दीजिए कि अल्लाह से ऐसे मांगा करो कि अल्लाह तू मालिकुल मुल्क है, तमाम मुल्क आपका है, जिसको जितना देना चाहें आप दे दें, आपके कब्ज़े में है, जब लेना चाहें तो आप ले लें, आपके हाथ में खैर के खजाने हैं। जिस इंसान का इस बात पे यकीन आ जाता है फिर वो कभी भी नाउमीद नहीं होता, कमज़ोर नहीं पड़ता। ये तो बड़े बड़े जंगी मामलात थे ना, हर इंसान की ज़िंदगी में जंगें नहीं आती, लेकिन मुआशरे के साथ जंग, माहौल के साथ जंग, अपने इर्द गिर्द रहने वालों के साथ एक आसाबी जंग हर दौर में रही। और कुछ ना हो तो अपने नफ्स के साथ तो जंग हर दौर में ही रही। जिस इंसान ने अल्लाह के ऊपर नज़रें लगा लीं उसका मामला जो था वो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उसको वहाँ से मदद दी जहाँ से कि वो सोचता भी नहीं था। हर इंसान की ज़िंदगी में आसाब शिकन हालात आ सकते हैं, लेकिन वो हालात उसको क्या बताते हैं कि देखो अगर अल्लाह सुबहाना ताला की ज़ात जो है वो तुम्हारा दामन थाम ले तो कोई तुम्हारा दामन छोड़ नहीं सकता। असल बात क्या है कि हम सब ने अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को देखना है। क्या वाकई मुझे अल्लाह ताला के वादों पे यकीन है? अब देखिए कि आम ज़िंदगी में इंसान जब मायूस होता है तो असल में अल्लाह ताला के इस गलबे वाली बात का इनकार करता है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की ज़ात बंदे का साथ दे और उसको गालिब ना करे, उसको आफियत ना दे, उसको ताकत ना दे? जितना ज़्यादा आप लोगों को देखते जाएंगे, हज़रत नूह का दौर देखिए, इतनी कौम जिसने हज़रत नूह को झुठलाया, अल्लाह ताला की अल अज़ीज़ होने की सिफ़त के मुकाबले में ठहर ना सकी और वो 70 से 80 लोग बच गए जो अल्लाह की बात को मानते थे। फिरौन के दौर में कौम फिरौन डूब गई और मूसा और उनके साथी जो थे बच गए। ये सब क्या बताता है कि अल्लाह ताला जो करना चाहे वो कर सकता है। इमाम इब्ने कय्यम का नाम सुना है आप लोगों ने? वो कौन थे? एक बहुत ही फकीर किस्म के इंसान थे। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा समझ और फहम दी होती है, शेर भी कहते थे और नसर भी कहते थे। तो वो अल्लाह सुबहाना ताला के नाम अल अज़ीज़ के ऊपर एक नज़म शेर है उनके, कुछ उनकी एक किताब है उसके अंदर है, अरबी में बड़ी खूबसूरत अशआर हैं, लेकिन बात तो हमें तभी समझ आएगी जब उर्दू में कहेंगे। तो बहरहाल कोशिश करूंगी कि उसमें चार नाते से उन्होंने अल्लाह ताला के नाम अल अज़ीज़ को समझाया है। नज़म के शेर कुछ ऐसे हैं, शुरू में वहुवल अज़ीज़ु फलन युराम जनाबुहु अन्नी युराम जनाबु ज़िस सुल्तान। कहते हैं अल अज़ीज़ वो ज़ात है जो गलबे वाली है, इस पर कोई दूसरा गलबा पा नहीं सकता। अल अज़ीज़ वो ज़ात है जो इंतहाई सख्त कुव्वत वाली है, और अल अज़ीज़ वो ज़ात है कि जो इंतहाई नफीस हो और इसकी मिसल भी ना हो और ना इसकी कोई नज़ीर मौजूद हो। और चौथे मिसरे में कहते हैं अल अज़ीज़ वो ज़ात है जिसकी ताकत और कुदरत इंतहाई दर्जे की है, इससे बढ़कर कोई कुदरत वाला नहीं और ना इसकी कोई मिसाल और नज़ीर है। कुरान पाक में ये नाम 92 टाइम्स आया है, 92, 9, 90 और 7, 2। आप देखिए कि अल्लाह ताला का ये नाम 92 टाइम्स आए और फिर भी मुसलमान अल्लाह ताला की इस सिफत पे गौर करते हुए अपने आप को ताकतवर न महसूस करें। सूरत बकरा की आयत 26 में आता है, वालम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम। सूरत आले इमरान आयत 4, वल्लाहु अजीजुन जुन्तकाम, और अल्लाह गालिब इंतकाम वाला है। सूरत शोरा में कई जगह आता है ये वाला लफ्ज़, व इन्ना रब्बक लहुवल अजीजुल अलीम। अंबिया कराम के किस्से हैं और हर रुकू में तकरीबन एक दफ़ा ये बात आती है। इसी तरह सूरत फातिर आयत 28 में आता है, इन्नल्लाह अजीजुन गफूर, बेशक अल्लाह ताला गालिब भी है और बख्शने वाला है। गौर कीजिएगा, दुनिया में जो ज़रा गलबे वाला होता है ना, वो जुल्म करने लगता है, वो लोगों का जीना धोबर करता है। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, मैं गालिब हूँ लेकिन माफ़ कर देता हूँ। हमें क्या बताता है कि तुम भी जब लोगों पे गालिब आ जाओ तो उनको माफ़ कर दो, तुम भी जब लोगों के ऊपर कुदरत पा लो तो उनको अल्लाह के लिए छोड़ दो। इसी तरह सूरह यासीन आयत 38 में आता है, ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये बड़े गालिब इल्म वाले की बनाई हुई तकदीर है। क्या बताया कि अपनी तकदीरों को ना कोसो, अपने मुकद्दर पे आंसू ना बहाओ। तुम अल्लाह सुबहाना ताला के अंदाज़ों में हो, वो तुम्हारे साथ जो मामला भी करता है उसकी वजह होती है कोई, और वजह क्या है कि कल तुम्हें वो इसके बदले में बेहतरीन मुकाम देना चाहता है। उसको मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए, कब चाहिए। जैसे माँ बच्चे को वक्त पे चीज़ देती है ना, इसी तरह अजीज़ भी गालिब रब्बे कायनात जो है, वो भी बंदे के साथ मामला कैसे रखता है, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। अब देखिए बच्चा क्या चाहता है, हर वक्त चाहेगा ना कि जो वो मांगे उसकी माँ उसको दे दे। तो क्या माएँ दे देती हैं? नहीं देती ना, क्यों नहीं देती? कोई बच्चा कहे कि मेरी माँ बड़ी ज़ालिम है, इसको मेरे पर रहम नहीं आता, उसको पता नहीं, ये बिगड़ जाएगा, अभी इसकी उम्र नहीं है, अभी ये छोटा है। मौजूद है ना ये बातें, लेकिन बच्चे को ये बात समझ नहीं आती। इसी तरह इंसान दुनिया में बास तो ऐसे हालात से दो चार हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वो अपने ऊपर रहम खाने लगते हैं। का निजाली का तकदीरुल अजीज़िल अलीम। इसी तरह एक अलामा तैयबी हैं, वो कहते हैं अल अजीज़ के मानी में, गौर से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत इंटरप्रिटेशन है इनकी। कहते हैं, अल अजीज़ जल्ला जलालुहू वो है कि इंसानी अकलें गुम हो जाएं, यानी इंसान की अकल उसका इहाता कर ही नहीं सकती। इसकी अजमत के समंदर में और अकल वालों की अकलें हैरान हो जाएं, इसकी तारीफ का इदराक करने से, और जुबानें आजिज आ जाएं इसके जलाल की तारीफ करते और इसके जमाल के वसफ बयान करने से। अल्लाह अकबर, कुछ छोटी हस्ती नहीं है वो जिसकी नाफरमानियाँ दिन रात करते हैं, जिसको भूल के जीते हैं, जिसके फैसलों पे एतराज़ करते हैं, जिसकी पसंद को नापसंद करते हैं और जिसकी नापसंदीदा चीज़ों को सीने से लगाए रखते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि बंदे को अल अज़ीज़ का मतलब समझ आ जाए और वो गुनाह करे, नाफरमानियों पर रहे। उसको पता है वो मालिक एकदम पकड़ लेगा। जैसे आप देखिए कि इंसान पुलिस मैन की गाड़ी को आता देख के स्पीड कम कर लेता है ना, उसको पता है ये पकड़ लेगा, ये गालिब है, मैं इसकी रेंज में हूँ, मैं इसके रिडार में आ गया हूँ। तो जिसको अल्लाह ताला की वसअतों का अंदाज़ा हो जाए कि इंसान गुनाह कर सकता है, गुनाह होता ही तब है जब अल्लाह ताला की बात समझ नहीं आती। तो लिहाजा हमने इस नाम पे गौर करते हुए क्या करना है कि अपने आप को अल्लाह की कुदरत में समझना। कभी बहुत ही दिल करे ना गुनाह करने को, तो फौरन कहें कि नहीं वो मुझे पकड़ लेगा, फिर कौन मुझे बचाएगा? अगर मैंने उसकी बात ना मानी और उसने मुझे पकड़ लिया, कौन है जो मेरे साथ नरमी का मामला करेगा? और ये वो गालिब ही है जो इंसानों को एक दिन तख्त पे बिठाता है और एक दिन जल्द ही आ जाता है कि जब इंसान तख्ते पे सवार हो जाते हैं। एक दिन बादशाह बना के लोगों के सामने पेश कर दे और कुछ दिन के बाद वो फकीर के भेस में खड़े हों, ये उसकी ज़ात है। तिल कलैया मुनुदा विलुहा बैन अन्नास, ये दिन है जो हम लोगों के लिए घुमाते फिराते रहते हैं, غور کرو کتنی بڑی ذات ہے جو اتنا کچھ کرتا ہے. اس نے یہ دنیا بے مقصد پیدا کی ہے, اس نے تمہیں یہ آنکھیں ایسی دے دی, اس کی جگہ دو بٹن لگا دیتا, اس نے زبان ایسی دے دی, اس نے کان ایسی دے دیے. تم کیوں نہیں سوچتے یہ سب کیوں ملا, کیسے ملا, اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک کرو گے جو سورج چاند ستاروں کا نظام چلانے والا اتنا غالب ہے کہ سورج چاند ستارے اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. وہ ڈرتے ہیں, وہ ایک لمحے کی سرکشی نہیں کر سکتے, لیکن انسان اسی مالک کو بھول کے جیتا ہے. تو ابھی تک ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام العزیز کا ایک روپ دیکھا تھا, غلبے والا, قہر والا, بڑائی والا. اس کو بتاتے ہوئے بھی میرے دل میں اتنا رعب آ رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے کوئی ذات بھینچ رہی ہے کہ وہ اتنا کچھ کر سکتی ہے, میں بچ سکتی ہوں. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس چیز پہ قادر نہیں تھا کہ ہم گناہ کرنے لگتے, چھٹ سے اوپر سے فرشتہ زور سے سر میں تھپڑ مارتا, ہم جھوٹ بولنے لگتے, زبان جو ہے وہ کینچی کی طرح کٹ جاتی, غلط چیزیں دیکھتے, ایک دم آنکھوں کے اوپر پردے آتے. وہ غالب ہے, وہ کر سکتا ہے, لیکن وہ نہیں کرتا, موقع دیتا ہے. بچو بچو, جو میں نے کہا ہے اس کو کر لو, تمہارے پاس ابھی مہلت کا وقت اور بھی ہے. اسی طرح العزیز لفظ کا معنی عزت سے بھی ہے, عزت دینے والا. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اس کے العزیز ہونے کا یقین رکھتے ہوئے کہ اگر مجھے عزت چاہیے تو وہ میرا رب ہی دے گا. آج ہم کہتے ہیں رب سے جتنا دور ہوں گے عزت ہوگی, ہر گناہ کو یہ سوچ کے کرتے ہیں نا, عزت کا معاملہ, یہ رسم نہیں چھوڑ سکتے, بے عزتی ہوگی, یہ پہن لوں گی تو بے عزتی ہو جائے گی, یہ پہنوں گی تو بڑی عزت والی بنوں گی. حالانکہ عزت کے خزانے العزیز کے ہاتھ میں, محبتوں کے خزانے اس کے ہاتھ میں. اور عزت اور مرتبہ کس کو ملتا ہے؟ جو سب سے نگاہیں ہٹا کے رب کے اوپر نگاہیں جوڑ لے. دوسروں سے امیدیں لگانے سے کیا ملتا ہے؟ غموں کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا. ابو العباس کہتے ہیں کہ مَا رَأَيْتُ الْعِزَّةَ إِلَّا فِي رَفْعِ الْهِمَّتِ عَنِ الْمَخْلُوقِينَ. عزت اور مرتبہ اسی کو ملتا ہے جو مخلوق کی طرف سے اپنی نگاہ کو ہٹا لے, لوگوں کی طرف نگاہیں نہیں لگانی. اب دیکھیں, جو شخص اپنی عزت کروانے میں کسی کا محتاج ہو, وہ دوسروں کو عزت دے سکتا ہے؟ جو مخلوق سے اپنی امیدیں ختم کرے گا, اس کو مخلوق سے کچھ بھی نہیں ملے گا, مگر اللہ کے حکم سے وہ خود اپنی نگاہوں میں عزیز بن جائے گا اور دوسروں کی نگاہوں میں بھی. ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب بندے کا تعلق جڑتا ہے نا, تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے غم, اپنے دکھ, اپنی پریشانیاں اس کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں رکھتا. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر انسان اپنے لیے اس چیز کو سوچ لینا, اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ دنیا میں کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جو میرے دکھ دور کرے, تو کیا ہم کسی کو دکھ اپنے بتائیں گے؟ ایک واقعہ, ایک قاضی شریخ ہیں, اپنی کتاب ہے ان کی عربی کی, صور من حیات التابعین, حیات صحابہ کے کچھ اس کے یعنی تصویریں. تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ کسی کے سامنے اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کی شکایت کر رہا تھا. آپ تو نہیں کرتے, ابھی حال ہی پوچھ لوں گی نا کیسا حال ہے, پھر دیکھیے ذرا جو حال بتائیں گے, کیا بتائیں, یہاں درد, یہاں یہ, بیٹھ نہیں سکتے, اٹھ نہیں سکتے, کرتے نا وہ, گھٹنوں میں درد, کھانا ہضم نہیں ہوتا, دانت میں درد. شکر ہے, اتنا کچھ کہہ کے کہتے ہیں شکر ہے. تو ایک شخص تھے, انہوں نے دوسرے کو دیکھا کہ اپنے دوست کے ساتھ بڑے اپنی مصیبتوں اور دکھوں کی بات کر رہا تھا. یہ اس کے پاس گئے, اس کا ہاتھ تھاما, پھر بڑے پیار سے ایک نصیحت کی جو ہمارے لیے بھی قابل غور ہے. کہنے لگے, یبن اخی ایاک و شکوہ لغیر اللہ عز و جل فإن من تشکو الی لا یخلو ان یکون صدیقا او عدوا. ترجمہ بولتی ہوں آپ کے سامنے. کہتے ہیں, اے میرے بھائی کے بیٹے, یعنی محبت کا انداز ہوتا تھا, اپنے سے چھوٹے کو عرب لوگ بھتیجے کہتے تھے اور بڑے کو اکثر چچا کہتے تھے. کہتے ہیں, میرے بھائی کے بیٹے, اللہ کے سوا کسی کے پاس شکوہ شکایت کرنے سے بچو. جس کے پاس تم شکوہ کرو گے, یا تو وہ تمہارا دوست ہوگا, या तुम्हारा दुश्मन होगा। अगर वो तुम्हारा दोस्त हुआ तो तुम्हारा गम सुन के गमगीन हो जाएगा, और अगर वो तुम्हारा दुश्मन हुआ तो तुम्हारा गम सुन के खुश होगा। लेकिन ना मुसीबतों और बुलाओं को तुम्हारा दोस्त दूर कर सकता है और ना तुम्हारा दुश्मन, तो फिर बताओ इनको शिकायत सुनाने का क्या फ़ायदा। फिर उसके बाद एक हाथ से अपनी आँख की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, मेरी इस आँख की तरफ देखो, खुदा की कसम गुज़श्ता 15 सालों में मैंने इस आँख से किसी को नहीं देखा, यानी आँख की बिनाई जा चुकी थी, लेकिन ना मैंने किसी शख्स को देखा ना कोई रास्ता देखा, लेकिन मैंने किसी को आज तक ये नहीं बताया कि मेरी ये आँख अंधी हो चुकी है। आज तुम्हें महज इसलिए बता रहा हूँ कि दूसरों से अपनी परेशानियों का जिक्र करने से कुछ नहीं मिलता। फिर कहते हैं, क्या तूने अल्लाह के उस नेक बंदे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ये जुमला नहीं सुना, इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपना शिकवा और गम अल्लाह के यहाँ पेश करता हूँ। फिर कहने लगे, फ़ज़लिल्लाह अज़्ज़ा व जल मशकाक, हर मुसीबत के वक्त अपना हुज़्न व मलाल और गम व अंदोह का शिकवा अल्लाह ही के दरबार में पेश करो, क्योंकि वही सवालियों की इज्जत रखने वाला है, बेकसों की इल्तजाएं सुनने वाला है और दुआएं मांगने वालों के करीब तर है। सच्चा नहीं? आप देखिए कि कौन है जो लाज रखता है। हाथ उठते हैं, वो हाथ गिरने से पहले आमीन कहते ही हमारी दुआओं को सुन लेता है। कोई दुनिया की ऐसी ज़ात है जहाँ बैठे बैठे किसी से कुछ मांगे थे वो कहेंगे ज़रा सब्र तो करो, मौका तो देखो है कि नहीं मेरे पास, तुम खाम खा मांगने लग गई। कभी किसी को ताना नहीं देता, इतना लजीज है कि सबकी मांगी हुई बातें उनको दे दे और कोई उससे वो चीज़ छीन नहीं सकता। एक दिन एक शख्स ने किसी को दूसरे से कुछ मांगते हुए देखा, लोग मांगते हैं ना, भीख भी मांगते हैं, तो बड़े प्यार से नसीहत की। इसका भी तर्जमा सुनाऊंगी, अरबी की कोटेशन है। कहते हैं, मेरे भतीजे, जो किसी इंसान से अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मांगे, गोया उसने अपने आप को इस इंसान की ग़ुलामी के सुपुर्द कर दिया। सच है ना? किसी के आगे हाथ फैल गया तो आपकी इज्जत क्या रही? अगर उस शख्स ने जिससे मांगा था सवाली की ज़रूरत को पूरा कर दिया, यानी मांगने के बाद मिल भी गया, तो गोया के उसने उसे अपना ज़हनी ग़ुलाम बना लिया। कहते हैं ना कि एहसान जो है वो ज़ुबान को काट देता है। तो आपको दे देगा, फिर आप सारी ज़िंदगी के लिए उसके आगे झुक जाएंगे हम। और कहते हैं कि अगर उसने उसे जवाब दे दिया कि जाओ माफ़ करो, नहीं है, तो गोया के दोनों जलीलो ख्वार होकर वापस लौटे, एक बुखल की जिल्लत के साथ, यानी वो उसके पास था लेकिन उसने दिया नहीं जिससे मांगा था, और दूसरा नाकामी की जिल्लत और रुसवाई के साथ कि क्यों मांगा इसे, ना ही मांगता। कितना बंदा एम्बेरस फील करता है ना जब किसी से कुछ मांगे और वो आगे से ना दे। जब भी तुझे कुछ मांगना हो तो अपने रब से मांगो, जब भी मदद तलब करो तो अपने रब से मदद तलब करो, और खूब अच्छी तरह ये बात जान लो। देखिए, यही वो चीज़ है जो इंसान को फिर अल्लाह के करीब करती है। मखलूक से जो उम्मीदें होती हैं वो अल्लाह के अलअज़ीज़ होने की नफ़ी बन जाती हैं। बाज़ लोग मायूस होते हैं, ये कहाँ से होगा, ये मुमकिन ही नहीं, क्या करें कैसे करें। नहीं, अल्लाह ताला दे सकता है। आप गुनाहों से बचने की तौफीक भी अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम तो ये जुमला नागवार बात के जवाब में पढ़ते हैं ना, हालांकि इसका मतलब क्या है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं किसी की ताकत किसी गुनाह से रुकने की सिवाय उसके जिसको अल्लाह ताला रोक ले। मफहूम इसका यही बनता है, अल्लाह ही देता है। इसलिए कोई ज़िंदगी का मामला हो, छोटा बड़ा, बच्चों का, शोहर का, घर का, माल का, बस पकड़ लो और रब के सामने खड़े हो जाओ, पुकारे उसको, ए अज़ीज़ तू गालिब है, तू बदल मेरे हालात, ए अज़ीज़ तू गालिब है, बदल मेरी बीमारी को सेहत में, दे मुझे ताकत, दे मुझे तंदुरुस्ती। यकीन करें, जितने यकीन से मांगेंगे उतने ही प्यार से वो देगा। इज्जत भी वही देगा। मन का न युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीया। सूरत फातिर की आयत नंबर 10 है। इसमें भी लफ्ज़ अल्लाह का अज़ीज़ नाम आ रहा है। जो कोई इज्जत चाहता है तो उसको बता दो कि सारी इज्जतों का मालिक रब है, फिर लोगों से क्यों लेते हैं? हम तो लोगों की जूतियां सीधी करते हैं ताकि वो हमें इज्जत दें, वो हमारी हमसे मोहब्बत करें। जो शख्स ये चाहे ना कि उसको दुनिया में भी इज्जत मिले और आखिरत में भी, उसका एक तरीका है, और वो क्या? अल्लाह की इताअत को लाजिम पकड़ ले। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। सूरह हुजरात में आता है, तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? जो मुत्तकी ज्यादा है, जो गुनाहों से डरता है, जो अपने आप को बुराइयों से दूर कर लेता है, इसलिए कि दुनिया और आखिरत की सारी चीज़ें अल्लाह ताला ही से मिलेंगी। तो अल्लाह ताला से हम ये दुआ करेंगे कि वो हमें दुनिया में भी इज्जत दे, आखिरत में भी इज्जत दे। और अल्लाह ताला गालिब है हमारे दिलों को, दिमागों को, सोचों को बदलने पे। तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला नाफरमानियों वाले दिल फरमाबरदारियों वाले बना दे, और वो चीज़ें जो दुनिया के पीछे लगी हुई हैं वो आखिरत के लिए लग जाएं। एक छोटी सी मिसाल दूंगी इंशाल्लाह। कहते हैं कि पहले दौर में ग़ुलाम होते थे, आप सबको पता है ना, और ग़ुलामी तो आपको पता है ना, मालिक और ममलूक, यानी जो मालिक होता था वो अपने ग़ुलाम की हर चीज़ का मालिक होता था। उसको बेच दे, उसे काम करवाए, जो भी वो काम करता था उसके सारे पैसे जो हैं वो उनको मिलते हैं। अब एक मिसाल बड़ी खूबसूरत है। कहते हैं कि अगर कोई ग़ुलाम है और उसका आका उसका मालिक है, बहुत बड़ी सल्तनत है, आका कहीं जा रहा है कुछ दिन के लिए, ग़ुलाम को कहता है कि देखो जब तक मैं इधर नहीं हूँ तो मेरी जगह पे बैठ जाओ। होता है ना, लोग खुद नहीं होते तो मुलाज़मों को अपनी गद्दी पे बिठा जाते हैं, कैश भी देते हैं, सब कहते हैं ये सब के तुम मालिक हो, जो भी होगा हम आएंगे तो वापस लेंगे। कहते हैं कि जैसे कोई आका ग़ुलाम को अपनी जगह पे थोड़ी देर बिठा के कहीं चला जाए कि जब तक मैं नहीं आता तुम इस मुल्क पे हुकूमत करो, या सो ऑन। अब उसके पीछे से ग़ुलाम की सोच क्या होगी? क्या वो अकड़ेगा? उसको क्या पता है कि देखो आज मैं गवर्नर हूँ, जो इक्तदार मुझे मिला इसमें मेरी तो कोई ताकत नहीं, मालिक ने दिया है मुझे। अभी जब आ जाएगा, हो सकता है कल ही मालिक आ जाए तो मुझे कहेगा चलो उतरो उतरो तख्त से, जाके बाथरूम धो, तो मुझे धोने पड़ेंगे ना, मेरी क्या औकात है? आप समझ रहे हैं बात को? यानी अगर कोई किसी को ऐसी थोड़ी देर के लिए अपनी चीज़ दे दे कि ये पकड़ो, चले हम इसको अपने लफ्ज़ों में समझ लेते हैं, एक शख्स है उसके पास कुछ भी नहीं है, पैदल चलता है या बहुत ही बेचारा गरीब है, टूटी हुई साइकिल है, फिर उसका कोई दोस्त या उसका मालिक या कोई भी उसको कहे ये मेरी गाड़ी की चाबियां रख लो और इसको चलाओ, क्या वो गाड़ी में बैठ के अकड़ेगा? वो क्या सोचेगा? अभी मालिक आएगा कहेगा लाओ चाबी वापस करो, चाबी दे के मैंने फिर टूटी हुई साइकिल पे बैठ जाना है। कहते हैं बिल्कुल इसी तरह बंदे को यही सोचना चाहिए कि असल मालिक वो है, गालिब वो है, अपनी दुनिया की सारी नेमतों को वक्ती तौर पे बंदों के हाथ में दे देता है, और जिस वक्त दिल चाहेगा उसको पकड़ के उतार के बिठा देगा। अगर इस बात का यकीन आ जाए तो फिर क्या होगा? ये तो दुनियावी गुलामियों की बातें हैं ना, अल्लाह ताला की ज़ात तो इससे भी बहुत बुलंद है। तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन मामलों करने वाला बना दे। आखिरी चीज़ इस नाम के नाते से देखेंगे कि अल अज़ीज़ तो है, गालिब तो है, लेकिन फिर भी दिन रात माफ़ करता है। अल्लाह ताला इस पे गालिब है ना कि बंदे को फ़ौरन पकड़ ले, नहीं पकड़ता। तो ये नाम हमसे ये तकाजा करता है कि हम जिन पे गालिब आ जाएं हम उनको माफ़ कर दें, जिन्होंने हमें दुख दिए हम उनको सुख देने की कोशिश करें, जिन्होंने हमें बद दुआएं दी हम उनको दुआएं देना शुरू कर दें। काम मुश्किल लगता है, लेकिन जब अल्लाह ताला की सिफत पे गौर करेंगे ना कि वो भी तो दिन रात यही कर रहा है। देखिए लोग उसके बेटे बनाते हैं, लोग उसका इनकार करते हैं, वो उनके घर सोने चांदियों से भर देता है। क्या आपको अपने इर्द गिर्द अल्लाह का गलबा नहीं दिखता? क्या गालिब नहीं है कि काफिरों को उठाए और पकड़ के समंदर में फेंक दे? लेकिन नहीं पकड़ता। क्यों? कि वो गालिब तो है, साथ ही साथ वो माफ़ भी करता है। इसलिए हमने अपने अंदर भी यही सिफत पैदा करनी है। दुनिया में भी उसी को इज्जत मिलेगी जो गालिब होने के बावजूद माफ़ कर दे। एक बहुत अच्छी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मूसा बिन इमरान अल्लाह के सामने बात करते हैं, कहते हैं, मेरे रब, आपके नज़दीक बंदों में से सबसे ज़्यादा इज्जत वाला कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो बंदा जो बदला ले सकता हो और फिर भी माफ़ कर दे। इज्जत मिलती है, यानी अल अज़ीज़ इज्जत देता है, कब? जब बंदा गालिब होने के बावजूद माफ़ कर दे। हम क्या कहते हैं? लोग पीछे हो गए तो लोग कहेंगे, देखा कमज़ोर था ना, इसीलिए नहीं बदला लिया। बातें सुन के चुप कर जाएं तो आगे कहते, लो चुप कर जाऊंगी तो वो अगला सोचेगा झूठी थी ना, इसलिए चुप कर गई। बार दफ़ा शैतान कैसे उकसाता है, नहीं, बात करो, जवाब दो, ज़रा अपनी बात को बड़ा करो। अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा था कि तीन बातों के ऊपर कसम खाई जा सकती है, जिसमें से एक बात क्या थी कि जो बदला ले सके इसके बावजूद अल्लाह के लिए दरगुजर कर दे, मैं अपने रब के लिए माफ़ करती हूँ जाओ। तीन बातें कौन सी थी? सदका देने से माल कम नहीं होता। दूसरी बात थी, बंदे के दरगुजर कर देने पर अल्लाह ताला उसकी इज्जत में इजाफा कर देते हैं। और तीसरी बात थी कि जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसको इज्जतें देंगे। अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि आप देखिए, जो शख्स इंतकाम लेने के बावजूद माफ़ कर देता है ना, तो लोगों के दिलों में उसकी अजमत बढ़ती है कि कैसा इसका दिल है, बदला ले सकता था। तो वैसे आप नहीं लेते, लेकिन अखलाकी तौर पे आप उस बंदे को मात दे देते हैं, वो हार जाता है। वो आप उसको, जिसको कहते हैं ना, खेल विद काइंडनेस, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ। तो ऐसे ही लोगों को फिर अल्लाह ताला जो है वो मदद देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हम सब के दिल में अपनी धाक बिठा दे और हम उसके गालिब होने को समझ सकें। दुनिया में जो कुछ मिला है ये अल्लाह का दिया हुआ है, किसी लम्हे छिन जाएगा। वो सबके ऊपर गालिब होते हुए माफ़ करता है, तो मैं दूसरों को माफ़ क्यों नहीं करती? आज बड़े बड़े दुनिया में नहीं दिखते जो एक वक्त में तख्तों पे बैठे हुए थे। कहीं दारा था, कहीं जमशेद, कहीं सिकंदर, कहीं तैमूर, हिटलर, नेपोलियन, कहाँ गए? सबका अंजाम क्या हुआ? सब मट्टी में मिल गए। जिन्होंने लोगों पे जुल्म किए आज वो अपने जुल्म की सज़ा पा रहे होंगे, जिन्होंने एहसान किए होंगे वो अल्लाह ताला से उसके बदले पाएंगे। तो वो गालिब कभी किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए कभी गरूर नहीं करना, कभी अपने आप को उसकी पहुंच से दूर नहीं रखना। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें भी इस नाम वाले वसफ़ हमारे अंदर भी डाल दे और हम खुदाई वसफ़ हासिल कर सकें। आप देखिए कि अल्लाह ताला का हर नाम जो है ना, वो हमारे लिए एक क्राइटेरियन भी है अपने आप को परखने का, कि क्या वाकई ताला जो अपने लिए पसंद करता है हम भी अपने लिए पसंद करते हैं।